खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। नया अहदनामा इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त उसका 5 बाप उसकी हम 14 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद बनो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो के क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बात चलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आज हम इस बात पर गौर करेंगे, इससे पहले कि पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, जब हम 14वीं आयत का बयान देखते हैं तो इसकी मैंने बड़ी तहकीक की, जानने की कोशिश की कि यह बयान हमें कहां से मिला है, कहां से आया है, कहां से इसको कोट किया गया है। सो बहुत दफ़ा पुराना अहदनामा पहले ही बयान करता है कि नए अहदनामा में कौन सी नबूवत पूरी हो चुकी है, और पुराना अहदनामा हमें पीछे लेकर जाता है उन तमाम बातों के बारे में जो नए अहदनामा में दर्ज हैं। सो पुराना और नया अहदनामा एक दूसरे के बारे में बयान करता है कि कहां पर यह बात कही गई, कहां से ये बात ली गई। सो बहुत से हवाला जात है जो पहले ही कह दिए गए थे और उनका नए अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है, जैसे मत्ती की इंजील 4 बाब में वो 3 के 3 बयान, पत्थरों से क्या रोटी बन जाए, यीशु मसीह का जवाब कहाँ से था, पुराने अहदनामा से, तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, कहाँ से था, पुराने अहदनामा में। फिर खुदावंद यीशु मसीह के कहा गया कि तू मुझे सजदा कर, तो यीशु मसीह ने बयान क्या किया, पुराने अहदनामा से, कि तू खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा ना करना। सो जब हम देखते हैं 14वीं आयत को, इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इसके लिए हमें 6-7 हवाला जात मिलते हैं, हो सकता है कि उनसे ये बयान इकट्ठा किया गया हो और यहाँ पर पालूस रसूल ने ये फरमाया है, और कुछ लोग ये दलील कहते हैं कि हो सकता है कि इब्तदाई कलीसिया में ये ईमानदारों का रोज़मर्रा का गीत था कि वो फरमाता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सो यहाँ पर जो सोने वाले की हालत बयान की गई है, बहुत दफ़ा उस ईमानदार की तरफ इशारा है जिसने अपने आप को क्या कर लिया है, सुन कर लिया है, जिसने अपने आप को खुदा की राहों से फेर लिया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से दूसरे हवाला जात मिलते हैं जो फरमाते हैं ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाला ऐसे सोता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं, उसे जगाने के लिए उसे हलाना पड़ता है, और मुर्दों में से जी उठ ऐसी हालत को बयान किया गया है बाइबल मुकद्दस में बहुत दफ़ा, जिस्म का मुर्दा हो जाना, दिल का मुर्दा हो जाना, सोच का बरगश्ता हो जाना, इन बातों की तरफ इशारा करता है। सो हम चाहते हैं कि आज हम 15वीं आयत पर गौर करें, और यहां पर लिखा है, सो इस 14वीं आयत में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आज सुबह हम इस पर गहरे तौर पर गौर नहीं करेंगे, हम 15वीं आयत पर गौर करेंगे। पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, गौर से, पूरी तवज्जो से, पूरी फिक्रमंदी से देखो कि किस तरह चलते हो। गौर करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है, और जो नतीजा है जिस बारे में बात हो रही है वो क्या है, कैसे चलते हो। हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें फ़िक्रमंदी करने की ज़रूरत है और होशियारी करने की ज़रूरत है, ताकि देखें कि हम किस तरह चलते हैं। और आगे जब चलेंगे तो पालूस रसूल उसकी हालत बयान करता है, चलते हो नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद बनो, दनाओं की मानद बनो, दनाओं की मानद चलो। तो चलो के लिए लफ्ज़ जो ज़बानदारी के तौर पर है चलना, किसी काम को करना, दूसरे लफ्ज़ों में दनाओं की मानद ज़िंदगी बसर करो, दनाओं की मानद तुम्हारी ज़िंदगी गुजरे, दनाओं की मानद तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। सो इस आयत पर हम बहुत कुछ सीखेंगे, उन तमाम सच्चाइयों पर जो बाइबल मुकद्दस में हमें कही गई हैं कि गौर से देखना है कि हम किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और वो ज़िंदगी हमारे लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। सो बाइबल मुकद्दस में दना और नादान के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है। मेरे साथ देखें मत्ती की अंजील उसका 7 बाब, वहाँ पर हमें खुदावंद यसु मसीह के मुबारक लबों से ये सच बयान मिलता है जिसे मत्ती रसूल ने सुना और लिखा। मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 24वीं आय से हम बाब के अखीर तक पढ़ेंगे, यानी कि 29वीं आय तक। ये उस वक्त का वाक़ है जब खुदावंद यसु मसीह पहाड़ पर बैठ गया और तालीम देना शुरू की। सो हमें हकीकी तौर पर पता नहीं कि वो कौन सा पहाड़ था, किस पहाड़ पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से पहाड़ों का जिक्र मिलता है। गलील के पहाड़ों पर खुदावंद यसु मसीह ने ज़्यादा अपना वक्त गुजारा, रात के वक्त दुआ करते हुए, सुबह को लोगों से अलहदा होते हुए, शाम के वक्त जैतून के पहाड़ पर, गुलगत्ता की पहाड़ियों पर और बहुत से दूसरे इलाकों का हमें ज़िक्र मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़िक्र नहीं मिलता कि कौन सा पहाड़ है। 5वें बाब में लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया और उनको तालीम देने लगा। सो पहाड़ के बारे में ज़िक्र नहीं है। सो 5वें बाब से 7वें बाब तक इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ी वाज, पहाड़ी वाज कहा जाता है। और जब हम 8वां बाब उसकी पहली आयत को देखते हैं, खुदावंद यसु मसीह तालीम देकर पहाड़ से नीचे उतर आया है। सो जब भी हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, हमें देखने की ज़रूरत है, जैसे आज के दौर में बाप और आयात को जब हम देखते हैं, यूनानी और अब्रानी तर्जमे को, जो स्क्रोल होते थे जैसे कि सहीफे लिखे जाते थे अलग अलग, उनमें आयात और बाप दर्ज नहीं थे और ना ही आज तक दर्ज हैं। ये बहुत देर बाद बाप और आयात दर्ज किए गए ताकि हम जो ईमानदार हैं इस मौजूदा वक्त में या इब्तदाई दौर में, जब बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल किया गया 96 और 100 के करीब, तब बाप और आयात को दर्ज किया गया ताकि पढ़ने वालों को क्या हो सके, आसानी हो सके। लेकिन यूनानी और अब्रानी जो अल्हाम खुदा ने दिया था, वहाँ पर ये नहीं कहा था कि मूसा लेख 1वां बाब उसकी पहली आयत फिर दूसरी आयत, नो, ये बाद में लिखे गए हैं ताकि पढ़ने वालों के लिए क्या हो, आसानी हो सके। सो जब हम देखते हैं असली ज़ुबान में, तो 5वां बाब, 6 और 7वां बाब क्या है? एक लम्बी गुफ्तगू है। ये वो पैगाम है जो यसु मसीह ने उस वक्त बैठकर अपने लोगों को दिया। ये वो छोटा सा गुफ्तगू का हिस्सा है जो यसु मसीह ने पहाड़ पर शुरू किया और पहाड़ के बाद ख़त्म करके, जैसे कहते हैं कि अगली किस्त शुरू हुई। जैसे हमारा दिन ख़त्म होता है तो उस दिन की तमाम काम उस दिन में लिखे जाते हैं। तो अगर हम किसी को कहानी बताएंगे तो कहानी बताते हुए कहेंगे कि फलां वक्त से फलां दिन में मैंने ये काम शुरू किया और शाम हुई और फिर सुबह हुई। सो पहाड़ी वाज 5वें बाब से 7वें बाब की आखिरी आयत तक क्या है? इसे पहाड़ी वाज कहा जाता है। इसलिए हम आज देखेंगे 24वीं आयत। ये छोटी सी बैकग्राउंड हमें मालूम होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं कि आपका कलाम अल्हामी नहीं है। बाइबल मुकद्दस बिल्कुल खुदा का अल्हामी कलाम है, खुदा का मकाशफा है। लेकिन हम सब की खबरदारी के लिए, हम सब की होशियारी के लिए आयात और बाब बाद में जब इसका तर्जमा हुआ यूनानी, अब्रानी और अरामी जबान जो अब्रानी से मिलती जुलती है, और लातीनी जबान और अरामी जो मिलती जुलती है उससे जब तर्जमा किया गया इंग्लिश जबान में, अरबी जबान में, हिंदी जबान में, फारसी में, उर्दू में और तमाम दूसरी जो 14-15 हज़ार से ज़्यादा जुबानें ज़मीन पर पाई जाती हैं, ताकि पढ़ने वालों को समझ हो सके कि वो कौन सा बाब कौन सी आयत पढ़ रहे हैं। जैसे आज हम सब के लिए ये आसानी की बात है। पुराने अहदनामा के लोग जब कहते थे वो ये नहीं कहते थे कि फलां आयत फलां बाब में कहा है, लेकिन क्या करते थे, यसाया नबी ने फरमाया है कि खुदावंद अपना खुदा कहता है, खुदावंद हमारा खुदा कहता है कि मसीह आएगा और कवारी से पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, और जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। मिसाल के तौर पर ऐसे वो कलाम करते थे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब कलाम किया तो क्या कहा था फरीसियों से, मत्ती की इंजील उसके 23वें बाप में हमें पता चलता है, 23वें बाप में। लेकिन जब यीशु मसीह ने कलाम किया होगा तो यीशु मसीह ने उस वक्त के लोगों को कह दिया होगा कि तुम्हारे हक में लिखा है, अफसोस तुम पर ऐ फकीयो और फरीसियो, तुम अपना पेट भरते हो, तुम बेवाओं की जमीन और जायदाद खा जाते हो और उनका माल हड़प कर जाते हो। तो यीशु मसीह ने पुराने अहदनामा में से कहीं ना कहीं पे वो इंतबाह उन पर कहा। वैसे ही पुराने अहदनामा में जैसे यीशु मसीह ने शैतान के सब जब अजमाए जा रहे थे तो क्या लिख कहा था, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब फिर कहीं ना कहीं पर जहां कहीं भी मौका मिलता था तो लोग ऐसे बात करते थे। लेकिन आज हमारे लिए आसानी क्या है कि हमें बाप और आयात से आसानी हो जाती है कि वहां फलां नबी ने ये बात कही है। सो मत्ती की इंजील 7 बाप उसकी 24वीं आयत, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अकलमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ाया और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। So, ये वो अकलमंद आदमी का खुदावंद यीशु मसीह जिक्र करते हैं। और हमें भी कहा गया है कि हम दनाओं की मानद बने, दना बने ना के नादान बने। नादान के बारे में क्या कहा गया है, 26वीं आयत, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ाया और आंधियां चली और उस घर को सदमा लगा, सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इस दोनों बयानात में हम जब देखते हैं अकलमंद आदमी ईमानदार को कहा गया है जिसने अपना घर खुदावंद यीशु मसीह पर बनाया है, जो इस तरफ इशारा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधियां आए, मी बरसे, पानी चढ़ाए, कैसा भी कहते हैं कि हालात हो, ये तमाम वाक्या जो यीशु मसीह ने यहां पर कहे हैं, मी चढ़ाए, मी बरसे, पानी चढ़ाए, आंधियां चलें और उस घर पर टक्करें लगें, ये दुनियावी तौर पर बात है जो समझने की है। जब मी चढ़ता है तो उससे नुकसान होता है, जब आंधियां चलती हैं उससे नुकसान होता है। सो यीशु मसीह ने उस कुदरती निज़ाम की जो बातें हैं जो इंसान को नुकसान दे सकती है उनको लेकर कहा कि अकलमंद आदमी वो है उसे इन तमाम हालात में कुछ कमी या कुछ उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। सो अकलमंद आदमी किसे कहा गया है, ईमानदार को, क्योंकि ईमानदार ही है। यहां पर क्या कहा गया है, जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अकलमंद की अक्लमंद आदमी की मानद है। सुनना, कलाम सुनने से क्या होता है, ईमान पैदा होता है, और जो कोई कलाम सुनता है वो उस पर अमल करता है। तो यहाँ पर जो अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो सादा तौर पर जो कुछ मैं कहता हूँ उस पर यकीन करेगा, वो मेरे कहने पर अमल करेगा, तो वो अक्लमंद आदमी है। सो अक्लमंद आदमी ईमानदारों को, और यहाँ पर बेवकूफ़ आदमी गैर ईमानदार को कहा गया है जिसने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को, यानी कि उस खुशखबरी को, उस कलाम को सुना और उसे कबूल ना किया। बातों के लिए लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश का वर्ड और यूनानी का लफ्ज़ लागोस। लागोस जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है कलाम। जो कोई मेरा कलाम सुनता है और उस कमाल कलाम को कबूल नहीं करता वो बेवकूफ़ आदमी की मानद है। उस पर आंधियाँ भी चलेंगी, उस पर तूफ़ान भी आएंगे, उस पर तमाम मुश्किलात आएंगी और वो कायम ना रहेगा। सो हमें ईमानदारों को इफ़सियों 5 उसकी 15 आयत में पालूस कहता है, पस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि धनाओं की मानद चलो। सो हमें इस बात में क्या करना है, तजर्बा करना है, जांच करनी है, मालूम करना है कि धनाओं की मानद जिंदगी बसर करें, धनाओं की मानद जिंदगी बसर करें, ना कि नादानों की तरह। मेरे साथ एक हवाला निकाले, हम इस पर ख़त्म करेंगे। यशाया 9, हाँ, यशवा उसका पहला बाप, यशवा उसका पहला बाप, जब हम उसका मतालिया करते हैं पहले बाप का, तो पहली याद से हमें पता चलता है कि खुदावन खुदा का बंदा मूसा है वो मर गया है, वफात पा गया है, और खुदावन खुदा ने अपने लोगों की रहनुमाई के लिए यशवा को चुन लिया। यशवा को जब चुन लिया तो यशवा घबरा रहा है, उसके दिल में खुदाई खौफ है कि मैं किस तरह इस बड़ी भीड़ की रहनुमाई करूँगा। आपको कज़ात की किताब के बाद, इस्तिस्ना की किताब के बाद यशवा की किताब मिलेगी, और यहाँ पर खुदावन खुदा उसे हौसला फजाई देता है। जब हम 5 आयत को देखते हैं, तेरी ज़िंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा, मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा, हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। और 7 आयत में लिखा है, तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा के इख्तियार रख कर उस शरीयत पर अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाएं हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कबालमंदी हासिल हो। और आज हम 8 आयत पर गौर करेंगे। सो मूसा मर गया, खुदा उनको ज़रूरत है कि अपने लोगों की रहनुमाई करे, और उसने यशवा को चुना। यशवा का मतलब है निजात, ये यीशु मसीह का अबरानी लफ्ज़ है, यीशु मसीह का अबरानी नाम है। यूनानी में यीशु मसीह को यसु कहते हैं और अबरानी में क्या कहते हैं, यशुआ। आपने देखी होगी वो यीशु मसीह की फ़िल्म जिसमें अबरानी और अरामी ज़बान बोली गई है, अबरानी और अरामी मिलती जुलती है, जैसे हिंदी और उर्दू लिखने में मुनफरद है लेकिन बोलने में एक ही जैसी है। देखते हैं ना फिल्मों में हिंदी बोलते हैं लेकिन जब हिंदी लिखी जाती है हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है बोलने में, लेकिन लिखने में बिल्कुल ही फ़र्क है। वैसे ही अरामी और अबरानी ज़बान बोलने में क्या है, एक जैसी है। सो यीशु मसीह का जो अबरानी नाम है वो क्या है, यशुआ, जिसका मतलब नजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। सो 8 आयत में क्या लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो। शरीयत की ये किताब यानी कि वो तमाम सहीफे जो खुदा ने मूसा को वो तमाम अहलाम जो खुदावंद खुदा ने मूसा को दिया। सो शरीयत की पहली पांच किताबों को खुदावंद खुदा ने मूसा को दिया और खुदावंद खुदा ने उनको कहा कि ये कलाम है जिसे तुम ना भूलना। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे अकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। अगर हम आज जैसे यशुआ कामयाब हुआ, उसने खुदा की मर्ज़ी को जाना, गौर की कि क्या है, अगर आज हम अपनी मसीही ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी खुदा के कलाम को अपने मुंह से, अपनी निगाहों से, अपने ध्यान और ज्ञान से हटाना नहीं है। अगर हम अकबालमंदी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें भी खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी होगी, इस तरह के गौर से देखें कि किस तरह चलते हैं, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह। सो नादान वहाँ पर मत्ती की इंजील में बेवकूफ़ आदमी नादान उस तरफ इशारा है जिसने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, लेकिन आज यहाँ पर सब मौजूद हैं जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं। सो आए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ करें।